ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے دہلی کی ریاستی حکومت بنانے کی عام آدمی پارٹی کی جانب سے تیاری۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جناب ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 8 دسمبر کو 5 ریاستوں کے الیکشن یا ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے نتائج کا اعلان ہوا۔ یوں تو 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے نتائج کا اعلان ہوا، لیکن سب سے زیادہ توجہ دہلی کے الیکشن کے نتائج پر رہی، اور ابھی تک توجہ اسی پر لوگوں کی مرکوز ہے۔ ہوا یہ کہ وہاں کانگریس جو 15 سال سے حکومت کر رہی تھی اس کا صفایا ہو گیا۔ بھارتی جنتا پارٹی مودی فیکٹر کے باوجود ضروری سیٹیں نہ جی سکی، اور پہلی بار اور مختصر سے عرصے میں اپنے آپ کو متعارف کرا کر انتخابی اکھاڑے میں کودنے والی عام آدمی پارٹی، جسے مخفف میں آپ بھی کہتے ہیں، وہ میدان میں اتری اور اس نے حیرت انگیز اور توقع سے کہیں زیادہ سیٹیں حاصل کیں، اگرچہ اس نے بھی اتنی سیٹیں حاصل نہیں کیں کہ جو حکومت بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اس کی سیٹیں کم ہونے کے باوجود بھی اور بی جے پی کی سیٹیں زیادہ ہونے کے باوجود عام آدمی پارٹی یا آپ کو ہی لوگ کامیاب پارٹی قرار دے رہے ہیں، اور شاید ایسا پہلی بار ہوا ہندوستان کی تاریخ میں۔ اور یہ بھی ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ الیکشن کے نتائج جب آئے تو اس نے کہا کہ ہم نہ کسی کی حمایت لیں گے اور نہ ہی کسی کو حمایت اپنی دیں گے، لیکن دوسری طرف کانگریس اور بی جے پی اس بات پر تلی ہوئی تھی کہ وہ اس کو حمایت دیں گی، اور اصرار کر رہی تھیں کہ آپ حکومت بنائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ایسا بھی بڑا دلچسپ واقعہ تھا، اور جو اپنے اعتبار سے سیاسی میدان میں ایک انوکھا واقعہ تھا۔ بہرحال ہوتے ہوتے اب نتیجہ اور صورتحال یہ آن پہنچی ہے کہ عام آدمی پارٹی یا آپ نے دہلی میں حکومت بنانے کی حامی بھر لی ہے، اور اس کی میٹنگیں بھی جاری ہیں، اور اعلان کے مطابق 28 تاریخ کو تقریب حلف برداری بھی ہوگی، اور اس پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال اس کے وزیر اعلیٰ بھی ہوں گے۔ لیکن آپ یا عام آدمی پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا؟ آئندہ جو دہلی کی حکومت بنے گی وہ کیسی ہوگی؟ اور آئندہ سال جو عام انتخابات ہونے والے ہیں اس میں آپ یا عام آدمی پارٹی کا رول اور کردار کیسا ہوگا؟ اور یہ جو دہلی کے نتائج تھے اس کا کتنا اثر عام انتخابات پر پڑے گا؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں۔
نئی دہلی میں عام آدمی پارٹی کی حکومت سازی کی تیاریاں جاری ہیں، اور تازہ اطلاعات کے مطابق پارٹی کے رہنما اروند کیجریوال ہفتے کے روز مقامی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے دہلی کے مشہور رام لیلا میدان میں حلف اٹھائیں گے۔ رام لیلا میدان میں تقریب حلف برداری کی وجہ یہ ہے کہ اسی میدان سے کیجریوال نے اپنا سیاسی کیریئر شروع کیا ہے۔ پارٹی نے خود کو عام آدمی کا نمائندہ قرار دیا ہے، اور یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کی حکومت درحقیقت عام آدمی کی حکومت ہوگی۔ چنانچہ دہلی کے وزیر اعلیٰ بننے جا رہے اروند کیجریوال نے سرکاری بنگلہ اور زیڈ سیکورٹی لینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد بھی عام آدمی جیسی زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تقریب حلف برداری کے سلسلے میں بھی پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ کسی کو بھی خصوصی طور پر مدعو نہیں کیا جا رہا، اور پارٹی کے ایم ایل اے اور ان کے اہل خانہ بھی عام پبلک کے ساتھ بیٹھیں گے۔ 1 سال سے بھی کم کی اپنی عمر میں عام آدمی پارٹی نے جس طرح کی کامیابی حاصل کی ہے وہ بے مثال ہے۔ پارٹی نے جس انداز سے کام کیا اور جس طرح کے نعرے اور اہداف چنے ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور ساتھ ہی قدرے مشکل بھی ہیں۔ لہذا تجزیہ نگاروں کا یہ خیال ہے کہ پارٹی کے لیے حکومت سازی کے بعد کا دور کڑی محنت کا دور ہوگا، کیونکہ زمینی سطح پر کام کرنے کی سختیوں کے ساتھ ہی اسے ہندوستان کی دونوں بڑی پارٹیوں بی جے پی اور کانگریس کی طرف سے بھی ہوشیار رہنا ہوگا، جو اندازوں کو درہم برہم کر کے سامنے آنے والی عام آدمی پارٹی کے وجود کو ہندوستان کی سیاست پر اپنے تسلط کے لیے چیلنج کے طور پر دیکھ رہی ہیں، اور پارٹی کو بدنام کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گی۔ کانگریس نے بلا شبہ عام آدمی پارٹی کے لیے بلا شرط حمایت کا اعلان کیا ہے، لیکن تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ کانگریس کا انداز قلعی کھولنے والا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش ہے کہ عام آدمی پارٹی نے جو وعدے کیے ہیں ان پر عمل درآمد اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ عام آدمی پارٹی نے سستی بجلی فراہم کرانے کا وعدہ کیا ہے، اور اس وعدے کو پورا کرنا اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اطلاعات ہیں کہ پارٹی اس کے لیے 2 ऑडिट टीमें बनाने पर गौर कर रही है। पार्टी ने दिल्ली के हर खानदान को 700 लीटर मुफ्त पानी देने का वादा भी किया है और इस वादे को पूरा करना भी काफी दुश्वार काम है। पार्टी ने झोपड़ियों में रहने वालों को पक्के मकानात देने और गैरकानूनी कॉलोनियों को कानूनी शक्ल में लाने की बात भी कही है। पक्के मकानात देने का वादा बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद ने भी सन 1995 के महाराष्ट्र विधानसभा में इंतखाबात में किया था, जिसका उसके इत्तेहाद को बड़ा फायदा पहुंचा था। इससे ये नतीजा निकलता है कि आम आदमी पार्टी का रास्ता काफी दुश्वार है, लेकिन ये भी तय है कि अगर पार्टी वादे पूरे करने के रास्ते पर गामजन हो गई और आवाम को नतीजे समरात नजर आने लगे तो ऐसे हसास वक्त में जब पार्लियामानी इंतखाबात नजदीक हैं, आम आदमी पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि जहां हिंदुस्तान के अवाम कांग्रेस के दौरे हुकूमत में सामने आने वाली माली बदउनवानियों से परेशान है, वहीं बीजेपी की इंतहा पसंदाना सोच और पॉलिसियों से मुल्क की काफी बड़ी तादाद बेचैनी महसूस कर रही है और आवाम के तीसरे मुतबादिल की तलाश में है। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी तश्कील देने से कबल गबन और बदउनवानियों के खिलाफ तहरीक में सरगर्म किरदार अदा किया था और इस तहरीक को पूरे हिंदुस्तान में पजीराई मिली थी। चुनाचे पार्टी ने बदउनवानियों की रोकथाम को अपने एजेंडे में अहम जगह दी है। अगर अमली सतह पर भी पार्टी कुछ कर दिखाने में कामयाब होती है तो पार्टी की हैरतअंगेज पेशरफ्त का सिलसिला जो दिल्ली से शुरू हुआ है वो दूसरे इलाकों तक भी फैल सकता है।
जनाब जी, आपने हमारे साथियों की तैयार करदा ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाई और चलते हैं सीधे दिल्ली स्टूडियो, जहाँ पर मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के मरकजी रहनुमा जनाब करण सिंह। आदाबाज़ है जनाब।
आदाबाज़
जी। करण सिंह, बहरहाल मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगा और जो सवाल सबके जहनों में है वो ये एक है, जब इलेक्शन का नतीजा आया, रिजल्ट आया, तो उसके बाद आप लोगों ने ये कहा कि हम ना तो किसी का साथ देंगे और ना ही किसी का साथ लेंगे और हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, विपक्ष में या अपोजिशन में बैठेंगे। अब वो कौन सी मजबूरी आई कि आपने कांग्रेस से हाथ मिला लिया और अब हुकूमत बनाने की तैयारी कर रहे हैं?
जी, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने किसी से हाथ नहीं मिलाया और न ही हमने किसी से समर्थन मांगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, सब ने हमें बिना समर्थन के, बिना शर्त के समर्थन देने की बात कही। और जो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी, उसने अपनी जिम्मेदारी से जब कदम पीछे किया तो दिल्ली की जनता ने उम्मीद हमसे लगाई कि ये लोग जो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, ये लोग आगे आएंगे और जो बातें, जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। तो जनता की जो राय, ओपिनियन हमने लिया बीच में जाके जनता के बीच में, तो उन्होंने कहा कि आपको सरकार बनानी चाहिए। और अभी भी अरविंद जी ने जो बात रखी है, केवल 28 विधायकों के बारे में उन्होंने कहा कि अब 28 विधायकों के साथ सरकार बना रहे हैं, हमने इसमें कांग्रेस के समर्थन और बीजेपी के समर्थन की कोई बात ही नहीं कही है। अब ये मान के चलिए अल्पमत सरकार हम बना रहे हैं और वो भी जनता की राय के साथ।
जी, तो कांग्रेस पर आपको कितना भरोसा है कि वो 5 साल तक आपका साथ देगी?
जी, हम तो ये 5 साल की बात सोच के ही नहीं चल रहे हैं। अगर हमारे को 10 दिन के लिए भी वो काम करने देते हैं तो हम 10 दिन के अंदर ही जनता के लिए जितना भी ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, जो वादे किए हैं उनका पूरा करने की कोशिश करेंगे हम लोग।
जी, आप स्टूडियो में मौजूद रहेगा, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मरकजी रहनुमा और पार्लियामेंटेरियन जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी वालेकुम सलाम।
नकवी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जमात बनकर दिल्ली में आपकी पार्टी उभरी और जमहूरी रवायत के मुताबिक जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वही दावा पेश करती है, लेकिन आप लोगों ने पहले दिन से ही ऐसा ना किया, क्यों?
देखिए, जो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, मेजॉरिटी नहीं थी हमारे पास। तो डेफिनेटली जब हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी और कांग्रेस के साथ हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि हमने कांग्रेस की, ये जो मैंडेट है वो कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस के मिस गवर्नेंस के खिलाफ है, कांग्रेस की करप्शन के खिलाफ है, तो इसलिए हम नहीं जा सकते। अब दूसरी पार्टी बनती थी, जो नई पार्टी है आप पार्टी, वो तो उसने जो है वो क्योंकि पर्दे के पीछे भी कांग्रेस के साथ थे और पर्दे के तो सामने आए वो। अब हम तो इनको बहुत हमने शुभकामनाएं दी है कि ये सरकार बनाए और सरकार बना करके जो सपनों के सौदागर बन करके ये आए थे तो उन सपनों के सौदागरों के सौदागरी को पूरा करें।
जी मैं फिर आपसे आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। करण सिंह, आपने मुख्तार अब्बास नकवी जी की बात सुनी कि पर्दे के पीछे आपका और कांग्रेस का कहीं ना कहीं कुछ चल रहा था, क्या इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, इस तरह की बातें तो बीजेपी पहले भी करती रही है और देश की जनता जानती है कि कांग्रेस ने भी हमें बीजेपी की बी टीम कहा और बीजेपी ने हमें कांग्रेस की बी टीम कहा, तो ये बातें तो सब जनता के सामने आ चुकी हैं। और जिस तरह से जो हाल कांग्रेस का दिल्ली में हुआ है तो कांग्रेस तो उसको स्वीकार कर चुकी है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा बौखलाहट जो है वो बीजेपी में है। इनको चिंता बढ़ गई है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जो आसानी से उनको दिल्ली में जीत हासिल हो सकती थी वो नहीं ले पाए, इनको चिंता अब लोकसभा की हो गई है। तो इसी कारण से जो है ये तरह तरह की बातें बीजेपी के साथ हाथ मिला ये सारी बातें करने लगे हैं।
जी दूसरी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कांग्रेस के मरकजी रहनुमा राशिद आलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी वालेकुम अस्सलाम।
राशिद आलवी साहब, आम आदमी पार्टी के रहनुमा भी मौजूद हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी और मुख्तार अब्बास नकवी साहब से भी। बहरहाल मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने एक बात ये की कि पर्दे के पीछे आप और आप यानी आप से मुराद कांग्रेस और दूसरे आप से मुराद यानी आम आदमी पार्टी, पर्दे के पीछे कुछ आपस में था जो अब पर्दे के बाहर आ गया है इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी, क्या कहेंगे आप?
देखिए, इस बात पे कौन यकीन करेगा। हम आम पार्टी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं ताकि मिड टर्म पोल ना हो, आम आदमी पे बोझ ना पड़े, इसलिए हमने इस पार्टी को सपोर्ट किया है। सरकार बनाने के लिए जितने मेंबर्स की जरूरत होती है वो किसी के पास नहीं थे, इसलिए यही बना सकते थे, इसलिए हमने इनको सपोर्ट किया है। और हम ये देखेंगे कि ये अपना प्रोग्राम, अपना मैनिफेस्टो, अपने वादे जो इन्होंने दिल्ली के लोगों से किए हैं वो पूरे करें। चूंकि चुनाव बहुत नजदीक है लोकसभा का, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है और इस तरीके की बातें वो करती है। इन बातों में ना कोई यकीन कर सकता है और ना कोई सच्चाई है।
जी मैं फिर हाजिर हूँ। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जाहिर है कि जमहूरी माशरे में और जो जमहूरी रवायतें होती हैं उसमें सियासी पार्टियाँ इस बात का भी ख्याल रखती हैं जैसा कि राशिद अलवी साहब ने कहा कि आवाम पर बोझ ना पड़े और मिड टर्म इलेक्शन ना हो, इससे जाहिर है कि हुकूमत पर भी और आवाम पर भी माली और हर तरह का बोझ पड़ेगा, तो कांग्रेस ने अगर साथ दिया तो क्यों एतराज़ है?
देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में ये पहली कोई ऐसी घटना नहीं हुई है या पहला कोई ऐसा अजूबा नहीं है या कोई ऐसा वेंडर नहीं है कि इससे पहले हुआ ना हो। मुल्क में बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप असम हमारा एक बहुत बड़ा स्टेट है, उस स्टेट में स्टूडेंट्स ने सरकार बनाई थी, उसके अलावा जो है वो एक फिल्म स्टार ने जो है वो आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई थी, और अभी अभी रिसेंटली इलेक्शंस में 30 साल से ज्यादा वक्त तक जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी जहां सरकार चला रही थी वहां पर ममता बनर्जी ने सरकार बनाई। तो इसलिए ये जो है कोई ऐसा अजूबा नहीं हो गया कि नेशनल पार्टीज जो है वो खत्म हो गई और ये जो है वो आम पार्टी कोई बहुत बड़ा उसने मिराकिल कर दिया कि वो कह रही कि नेशनल सीन में आज भी कांग्रेस लेड अलायंस एंड बीजेपी लेड अलायंस के बीच में लड़ाई होगी, इलेक्शन की लड़ाई होगी, और कांग्रेस लेड अलायंस और बीजेपी लेड अलायंस ही पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होगा। उसके अलावा रीजनल पार्टीज होती हैं, रीजनल पार्टीज का अपना 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 मुकाम है, और जहां तक सवाल है कि अब इन्होंने जो वायदे किए तो और कांग्रेस ने इनको सपोर्ट किया है तो उस वायदे को पूरा करने की जिम्मेदारी न सिर्फ जो है वो ये आम पार्टी को है बल्कि अमरूद पार्टी को भी है, यानी कांग्रेस और आप पार्टी दोनों को है। फिर ये दोनों को मिलकर के जो है वो इस वायदे को पूरा करना पड़ेगा। अब कोई ये कहेगा जो उन्हें तो मालूम, कांग्रेस को तो मालूम है पहले से कि इन्होंने वादा किया है कि हम बिजली दे देंगे फ्री, पानी दे देंगे हम 700 लीटर फ्री, और पता नहीं क्या क्या कर देंगे दुनिया का सारी चीजें। तो जब आपने ये सपोर्ट किया है तो ये चीजें तो जान करके सपोर्ट किया ना कि ये इनके ये वायदे हैं, तो आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उनके वायदे को पूरा करने में मदद करिए आप।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। करण सिंह साहब, आपने दोनों मरकजी रहनुमाओं और लीडरों की गुफ्तगु सुनी, कांग्रेस के लीडर राशिद अलवी साहब और बीजेपी के लीडर मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आप कैसे बिजली के बारे में जो आपका वादा है या पानी के बारे में जो आपका वादा है, क्या ये संभव है, ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है, आप कैसे कर सकेंगे?
देखिए मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अरविंद जी जब कोई भी बात करते हैं तो बिना आधार के नहीं करते। इसके ऊपर पूरी पहले स्टडी की गई, पानी के बारे में भी, बिजली के बारे में भी, और उसके बाद ही हम एक बेस लेके चल रहे हैं। और हम पानी के बारे में तो अभी आज स्पष्ट कर चुके हैं, बता चुके हैं कि सरकार बनने के 24 घंटे बाद जो है 700 लीटर पानी का, जो मुफ्त पानी का वादा किया है वो हम लागू कर देंगे। और बिजली की जो जहाँ तक बात आती है तो उसके लिए हमने कहा है कि सरकार बनते ही हम जो कंपनियों का ऑडिट कराने के लिए कहेंगे, और जितनी जल्दी हो सकेगा जो हमने कहा है 50% तक जो दाम हम कम करने की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही जल्द हम ये करेंगे। तो ये बातें हवा में नहीं कही गई हैं, पूरी तरह से इसके ऊपर रिसर्च स्टडी करने के बाद, जानकारी लेने के बाद ये वादे किए गए हैं जनता के साथ।
जी आज जो आप लोगों की मीटिंग हो रही थी उसका क्या नतीजा निकला और क्या ऐलान हुआ, कुछ बताएंगे हमारे देखने वालों को, नाज़रीन को?
जी आज तो एक सुबह जो है अरविंद जी ने जनता के साथ वो मुलाकात कर रहे थे और जनता अपनी समस्याओं को लेके वहाँ पहुँची थी उनके पास, तो वहीं उन्होंने कुछ बातें वहाँ कही हैं लोगों के बीच में। तो वो चीज़ें तो जैसे पानी का मैंने बताया, उसके बारे में तो वो स्पष्ट कर चुके हैं, और जन लोकपाल के बारे में उन्होंने कहा है। तो ये जो कुछ मुद्दे हैं इस पर तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि पहले महीने में ही हम मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं उन पर अपनी कार्रवाई करें।
जी राशिद अली साहब, मुख्तार अब्बास नकवी साहब या जो आपके मुखालिफ जमातें हैं वो मौजूदा सूरत हाल में आम आदमी पार्टी के लिए जो आपकी हिमायत है तो उसके अखलास पर सवालिया निशान लगा रहे हैं कि गोया इसमें जो हिमायत आप दे रहे हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा खुलूस नहीं पाया जाता, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पार्टी जो है इतने संगीन इतने अहम वादों को पूरा नहीं कर पाएगी, तो आप उन्हें हिमायत करके उनकी नाकामी का जो है वो आवाम के सामने तशहीर करना चाहते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस तरह की बातों पर?
देखिए खुलूस और हमदर्दी का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि हम पार्टी ने जनता के बीच में अपना मैनिफेस्टो जारी किया और इस पार्टी ने कुछ वादे किए, दिल्ली के लोगों ने उन वादों के मुताबिक उनको इतनी ज्यादा सीटें दी जिनकी उम्मीद शायद उनको खुद को भी नहीं थी कि उनको इतनी ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। हम जमहूरियत के अंदर आवाम का जो फैसला होता है उसका एहतराम करते हैं और जमहूरियत में आवाम ही फैसला करते हैं, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता उनके फैसलों का एहतराम करने के अलावा। हमने सपोर्ट दी है कि आपने जो वादे किए हैं उनको आप पूरा कीजिए, जिन वादों को लेकर आवाम ने आपका साथ दिया है हम भी देखना चाहते हैं कि उन वादों को आप किस तरह पूरा करते हैं। आप पूरा करेंगे हमारी मदद आपके साथ शामिल रहेगी, आप पूरा नहीं करेंगे अवाम आपके खिलाफ होंगे, तो जाहिर है कांग्रेस पार्टी को भी गौर करना पड़ेगा कि अगर आप अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारा आम पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, हमने उनको सपोर्ट किया है इसलिए क्या है कि दूसरा चुनाव फौरन नहीं होना चाहिए, और चूंकि दिल्ली के लोगों ने बड़ी ताकत के साथ उनको इतनी ज्यादा सीटें दी हैं तो तो हम उस फैसले का एहतराम करते हैं और ये देखेंगे कि ये अपने वादों को किस तरह पूरा करते हैं।
राशिद अली साहब, फर्ज करें कि इन्होंने जो बिजली और पानी की बात की है और इस सिलसिले में ये अपना वादा पूरा न कर सके, तो क्या अपनी हिमायत आप वापस ले लेंगे? चूंकि ये बात आप भी जानते हैं, यानी आपकी पार्टी जानती है कि ये ऐसा वादा है कि जिस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है, और अभी तक आपकी ही हुकूमत थी जो ये काम ना कर सकी, तो अगर फर्ज करें कि ये लोग भी ये ना कर सके, तो क्या आप हिमायत वापस ले लेंगे?
देखिए, बिल्कुल मैं कहूंगा, अगर ये अपने वादे पूरे नहीं करते, जिन वादों को अवाम के सामने ये कहकर आए हैं, तो बहुत बड़ा सवाल सिर्फ हमारे सामने नहीं होगा, दिल्ली के अवाम के सामने भी होगा। और अगर दिल्ली के अवाम का एतमाद और एतबार ही ये खो देंगे, तो इन्हें खुद हक नहीं रहेगा कि ये सरकार बनाए रखे। लेकिन मैं आज अभी तो इन्होंने हकूमत की इब्तदा भी नहीं की है, अभी तो वजीर आला की शपथ भी नहीं ली है, उसकी ओथ भी नहीं ली है, इसलिए मैं कोई बात ऐसी नहीं कहना चाहता कि इनको क्रिटिसाइज करूं, ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये कोई भी जबान हमारे बारे में बोले। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, आप बिजली की कीमत, पानी को मुहैया कराना, ये सब काम कीजिए, हम गैर मशरूत आपका साथ दे रहे हैं। सिर्फ ये शर्त है कि आप अपने किए गए वादे, अपने मैनिफेस्टो को पूरा कीजिए, अमली जामा पहनाइए। अगर नहीं पहना पाएंगे तो यकीनन ये गौर करना पड़ेगा कि अगला कदम क्या हो।
जी मुख्तार अब्बास नकवी साहब, खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और बाज़ हलकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आइंदा जो जनरल इलेक्शन है उसके सिलसिले में ये पार्टी जो है वो आप लोगों के लिए चैलेंज बनकर उभरी है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या कहेंगे आप?
देखिए, पहली बात तो ये कांग्रेस पार्टी और आम पार्टी, इसके बारे में तो अभी आप, अभी राशिद भाई ने जो बात की उससे इतनी कह सकते हैं कि जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। तो अभी जो सरकार बनने से पहले ये तलखी है, और इस तरह के जिस तरह की गाली गलौज, जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल आम पार्टी कर रही है, तो उसका पार्टी या कोई भी खुददार इंसान उसके साथ कितने दिन रहेगा, ये तो देखने की बात है। जहां तक सवाल है कि आम पार्टी का जो है वो पूरे मुल्क में क्या होगा, वो आने देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, उसका उसका कोई बहुत मायने नहीं है, क्योंकि तमाम रीजनल पार्टीज है, तमाम एक पार्टी नहीं, तमाम स्टेट्स में हमारे यहाँ अलग अलग पार्टियां काम कर रही हैं और वो करेंगी। लेकिन जो इलेक्शन है ये नेशनल इलेक्शन होगा, और ये इलेक्शन कांग्रेस वर्सेज बीजेपी होने वाला है। इसमें इसके अलावा पार्टी अमरूद पार्टी बीच में नहीं आने वाली है।
जी तो क्या आप नहीं समझते कि जनरल इलेक्शन के मौके पर कोई तीसरा महाज खुलकर सामने आ जाए, मसलन आम आदमी पार्टी और उसके साथ?
ये ये सोच ही अपने आप में चूचू का मुरब्बा है, ये सोच पूरी कोई मतलब ही नहीं इसका।
जी
ये हर बार हर इलेक्शन से पहले इस तरह की पार्टियां पैदा होती हैं और पैदा होते ही खत्म हो जाती।
जी करण सिंह साहब, आपकी स्ट्रेटजी जाहिर है कि फिलहाल अभी दिल्ली में हुकूमत बनाने पर मरकूज़ है और उसी पर केंद्रित है आपका ध्यान, लेकिन जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं उसके बारे में भी आप लोगों ने कुछ सोचा है?
जी जरूर, और इस बारे में हम पहले ऐलान कर चुके हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान में अब लोकसभा चुनाव में जाएंगे और जनता के बीच में जाके उसी तरह से मेहनत करेंगे जैसे हमने दिल्ली में किया है। और जिस तरह से नकवी साहब कह रहे हैं कि इस तरह की पार्टियां चुनाव से पहले दिखती हैं उसके बाद नज़र नहीं आती, तो दिल्ली के बारे में भी इन्होंने ऐसा ही कहा था कि ये लोग तो मुश्किल से एक सीट निकाल लें तो बड़ी बड़ी हैरानी होगी हमें। तो इस तरह की बातें पहले भी कही गई, इनके कई नेताओं ने ऐसा कहा कि अगर इनकी एक सीट भी आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो ये तमाम बातें ये पहले कह चुके हैं, तो परिणाम इनके सामने हैं, तो लोकसभा के परिणाम के लिए भी ये तैयार रहें, हम उसी तरह से मेहनत करेंगे, उसी तरह से इनके लिए एक नया चैलेंज बन के उभरेंगे। और अब ये इस गलतफहमी में ना रहें कि बीजेपी और कांग्रेस ही दो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, एक आम आदमी पार्टी, एक आम आदमी की नई पार्टी अब लोगों के बीच में आ गई है और उसने अपनी शुरुआत दिल्ली से कर दी है।
तो क्या आप नहीं समझते कि आपने या कांग्रेस की जो आपने हिमायत कबूल की है, आपने कहा कि हमने हाथ नहीं मिलाया बल्कि कांग्रेस ने हमको हिमायत दी, हम आप ही के जुमले की बात कर रहे हैं, आप ये नहीं समझते कि इलेक्शन तक तो आप ये कहते रहे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही करप्ट पार्टियां हैं, बदनवान पार्टियां हैं और इन्हीं के खिलाफ हम मैदान में उतरे हैं और अब आप उन्हीं का साथ ले रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि जनता आवाम खुद आप के बारे में सोचने पर मजबूर होंगे?
देखिए, मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो राय है ये जनता की राय है। हम जो सरकार बना रहे हैं हम मुद्दों पे आधारित बना रहे हैं। जैसे ही इन लोगों ने पेशकश की कि हम आपको सपोर्ट करेंगे तो हमने उनके सामने मुद्दे रखे, दोनों पार्टियों को हमने भेजा, बीजेपी को भेजा, कांग्रेस को भेजा। कांग्रेस ने जवाब दिया, बीजेपी ने तो जवाब भी नहीं दिया कि वो मुद्दों पर साथ देने के लिए तैयार है कि नहीं है। तो उसके बाद हम जनता के बीच में गए कि भाई देखिए ये पार्टियां इस तरह से कह रही हैं। तो उसके आधार पे जब हम जनता के बीच में गए, मोहल्ला सभाएं हमने की, नुक्कड़ सभाएं की, जनता से राय ली, लोगों ने एसएमएस के थ्रू, चिट्ठियों के थ्रू हमारे को भेजा संदेश, तो उसमें 90% लोग चाहते थे कि हम सरकार बनाएं। तो जनता की राय के साथ हम आए हैं। और जो बात आपने कहा कि हम किसी का समर्थन लेंगे ना देंगे, ये बात पे हम पहले भी क्लियर थे, अभी भी हमने इनको जो मुद्दे भेजे थे 18, उसमें स्पष्ट तौर पे कांग्रेस को कहा है कि भाई हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों के भ्रष्ट जो लोग हैं उनके खिलाफ जांच कराएंगे, क्या आप तैयार हैं? तो ये चीज हम कोई सत्ता बनाने के लिए तो आ नहीं रहे हैं, हम लोगों के मुद्दे जो है उनको हल करने के लिए आ रहे हैं और पहले स्पष्ट कर चुके हैं। कांग्रेस भी अगर हमारे को सपोर्ट कर रही है तो उसके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के जो भी चार्जेज होंगे हम जन लोकपाल जो लोकायुक्त वो बना के वो जांच कराएंगे।
जी राशिद अली साहब, सुना आपने कि इन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी के जो बदउनवान अनासिर सियासतदान हैं उनके खिलाफ भी हम तहकीकात कराएंगे, उनके लफ्ज़ों में आपसे सवाल करना चाहूँगा, ये मेरा अपना ज़ाती सवाल नहीं, क्या ये कड़वी गोली जो है कांग्रेस घुटने के लिए तैयार रहेगी और इसके बावजूद भी इनकी हिमायत जारी रखेगी?
देखिए, हमारे यहाँ ना कोई बदउनवान आदमी है ना कोई बेईमान आदमी है, ये सरकार में होंगे तहकीकात कराएं। अगर हमारे यहाँ कहीं बदउनवान आदमी होता तो यकीनन हम सपोर्ट नहीं करते और इनकी तहकीकात से घबरा जाते। तो इन्हें इख्तियार है, ये अपने सरकार की तहकीकात कराएं, कांग्रेस के जिस नेता के खिलाफ इन्हें करानी हो उसके खिलाफ तहकीकात कराएं। लेकिन मेरा मशवरा होगा कि तहकीकात पे जोर देने की बजाय अपने वादों पर जोर दो, दिल्ली की समस्याओं पर जोर दो, अपना मैनिफेस्टो जो आवाम के बीच में लेकर गए हो उस पर अमल दरामद करो। ऐसा ना हो कि तहकीकात में सारा वक्त गुजर जाए और दिल्ली के लोगों का इतमाद ही खत्म हो जाए। पिछले 65 साल में कितनी पार्टीज बनी हैं और खत्म हो गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन लोगों की पार्टी खत्म होगी या नहीं होगी। आसाम के अंदर आसाम गण परिषद थी, नए नौजवानों ने बनाई थी, कुछ दिन चली, आज उसका नामो निशान नहीं है, बराए नाम रह गई है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहता हूं कि मूवमेंट से निकले हुए लोग, मूवमेंट से निकली हुई पार्टीज कभी कभी बहुत आगे बढ़ जाती हैं। नॉर्दर्न इंडिया में बहुत लोग हैं जो जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट से निकले और उन्होंने पार्टीज भी बना रखी हैं, वो नेशनल पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स में अहम रोल अदा करते हैं। तो लेकिन इनको इख्तियार है, ये जिसका चाहे तहकीकात करें, इंक्वायरी सेटअप करें, मालूमात करें, और जो गलत लोग हैं इनकी इंक्वायरी में आते हैं उन्हें देश के सामने लेकर आए। कांग्रेस पार्टी किसी बात से नहीं घबराती है, लेकिन ये जरूर कहूंगा अपनी जबान पर थोड़ा काबू रखें। हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई मजबूरी है। हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि आप दिल्ली के हक में काम करें और दिल्ली के अंदर कोई मिड टर्म पोल ना हो जिसका बोझ आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो।
जी राशिद साहब, बाज हल्के ये कह रहे हैं कि जब से ये दिल्ली का नतीजा आया है उसके बाद से राहुल गांधी और दीगर जो कांग्रेसी लीडरान हैं आइंदा इलेक्शन के सिलसिले में उनका नारा भी कुछ तब्दील होता नज़र आ रहा है और वो भी अब کرپشن اور بدعنوانی کو اصل مدعا یا اصل موضوع بنا رہے ہیں جس طرح سے عام آدمی پارٹی نے موضوع بنایا تھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کی طرف سے یہ نعرہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا آپ کے خیال میں جنرل الیکشن کے سلسلے میں؟
دیکھیے، ہم نعرے بنانے میں اور نعرے دینے میں یقین نہیں کرتے، ہم نے اس ملک کے اندر کیا ہے، ہمارا اپنا کیبنٹ منسٹر تھا جو ہماری کلائی ہیں ان کا ممبر ہے، سرکار سے سیدھا جیل بھیج دیا، ہمارا اپنا ممبر آف پارلیمنٹ تھا ہم نے ان کو جیل بھیج دیا، ہمارا اپنا مکھیہ منتری تھا جس سے ہم نے شک و شبے میں استعفی دلا دیا، ابھی تک ان تمام لوگوں کے معاملے میں عدالت کا کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے، اور قانون کا یہ بنیادی اصول ہے کہ جب تک عدالت کسی کو گناہگار نہ کہہ دے وہ آدمی گناہگار نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ عدالت کا کوئی فیصلہ نہیں آیا، ہم نے ان لوگوں کو تاکہ وہ شک و شبے سے باڑا کر رہے، ہم نے یہ سارا کام کیا ہے، تو بھرشٹاچار کے خلاف جتنی لڑائی ہم نے لڑی ہے اتنی کسی نے نہیں لڑی ہے، صرف نعرے دینے سے کام نہیں چلتا، عمل کرنے سے چلتا، اور ہم نے عمل کر کے دکھایا ہے۔
جی مختار عباس نقوی صاحب، ظاہر ہے کہ دہلی اور دیگر ریاستوں میں انتخابات ہوئے اور نتائج ایک ساتھ ہوئے، لیکن چونکہ صورتحال کچھ ایسی تھی کہ دہلی پر توجہ لوگوں کی سب سے زیادہ ہو گئی اور دیگر ریاستوں کے ساتھ اگر اس کے بارے میں گفتگو نہ کی جائے تو شاید ناانصافی ہو، کہا یہ جا رہا تھا الیکشن سے پہلے کہ اس بار مودی فیکٹر بڑا کام آئے گا اور نریندر مودی کی، مختار عباس صاحب میری آواز سن رہے ہیں؟ ہاں، ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ ان کا رابطہ منقطع ہو گیا ان سے ہمارا، بہرحال ہمارے ساتھی کوشش کریں گے دوبارہ رابطہ ہو۔ چلتے ہیں اسٹوڈیو میں، کرن سنگھ صاحب موجود ہیں۔ کرن سنگھ صاحب، ابھی راشد علوی صاحب کہہ رہے تھے کہ دو چیزوں کا آپ خیال رکھیں، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم آپ کی حمایت کر رہے ہیں، آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے دہلی کے جنتا اور عوام کی مشکلات دور کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس پر توجہ دیں، اور دوسری جو ہے وہ آپ کی جو پارٹی اس پر ایک بات یہ کہی جا رہی، الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی زبان جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کے سلسلے میں آپ لوگ کی زیادہ سخت ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیں، تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟
جی، اس بارے میں دیکھیے، ہمارا پہلا فوکس جو ہے وہ یہی ہے کہ جنتا سے جو وعدے کیے گئے ہیں ان کو ہم جلد سے جلد پورا کریں، اور دوسری رہی بات زبان والی بات جو کہہ رہے ہیں راشد صاحب، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ راجنیتی میں جو نیتکتا اور جو شالینتا ہونی چاہیے وہ دوبارہ سے قائم ہو، اور بہت ہی اچھے طرح سے دیش کی جو راجنیتی ہے وہ دشا اپنی لے، ہم راجنیتی کی دشا بدلنے کے لیے، ویوستھا بدلنے کے لیے ہم آئے ہیں، تو ہم پوری اس میں اپنا یوگدان دیں گے کہ چاہے وہ زبان کی بات ہو چاہے وہ کام کی بات ہو، ہر طرح سے ہم اس کے اندر ایک نیاپن، ایک اچھائی ہم لے کے آئیں، لوگوں کی نظر میں جو راجنیتی کے بارے میں ایک اوپینین بدلا ہے اس کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے سمے میں راجنیتی کے بارے میں لوگوں کا نظریہ اور پوزیٹیو ہوگا۔
جی کرن سنگھ صاحب، آپ نے جو دوبارہ محلوں میں جا کی میٹنگیں کی ہیں اور کارنر میٹنگ کی ہے، پھر ایس ایم ایس یا جو جنم سنگرہ ایک طرح سے عوام کا جو خیال معلوم کیا ہے، اس کے بارے میں کیجریوال صاحب کی جو ایک سابق ساتھی تھیں یا نازارے کی ٹیم میں کرن بیدی، انہوں نے ایک بیان دیا، کہا ہے کہ یہ جو آپ نے کیا جنم سنگرہ یا عوامی رائے جو معلوم کی ہے، یہ جمہوریت یا لوک تنتر پرکریا پر سوال اٹھانا ہے، یعنی یہ کام آپ نے صحیح نہیں کیا ہے، کیا جواب دیں گے آپ ان کا؟
دیکھیے کرن جی، اگر اچھے سے ہمارے سوراج کیا جو اودھارنا ہے اس کو اگر سمجھے ہیں، تو ہم نے یہ چیز سپشٹ کی ہے کہ ہم جو راجنیتی ہے وہ گراس روٹ تک لے جانا چاہتے ہیں، عام لوگوں کے بیچ میں، محلہ سبھاؤں کے دوارا، گرام سبھاؤں کے دوارا، ان لوگوں کو وہ طاقت دینا چاہتے ہیں جس سے کہ دیش میں کچھ مہتوپورن جو فیصلے ہیں وہ جنمت سینگرہ کے دوارا کرائے جائیں، اور لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ایک شکتی کے طور پہ دیکھیں، پانچ سال میں چناؤ میں ایک بار بھاگیداری کرنا، اس کے بعد پھر بھول جانا، मैं ये नहीं हम ये नहीं चाहते कि देश की जनता जो है 5 साल में एक बार ही अपने नेता को चुन के और फिर निश्चिंत हो जाए। हम चाहते हैं उसकी भागीदारी बढ़े, और जो नेता है वो एक तरह से सेवक है, और सेवक को जनता के बीच में जाना चाहिए। जब भी महत्वपूर्ण अहम फैसले हों तो जनता के बीच में जाके होने चाहिए, तभी मेरे ख्याल से सही निर्णय हो सकता है। तो स्वराज की जो अवधारणा हमने कही है ये उसी का एक एग्जाम्पल था कि हम इस तरह का जो निर्णय लिया सरकार बनाने का, जनता के बीच में गए और जनता की राय जानी कि भाई ज़्यादा जनता क्या चाहती है। तो जब 90% लोगों ने कहा कि हमें सरकार बनानी चाहिए तो हम सरकार बना रहे हैं। हमने कमरों में बैठ के, अंदर दफ्तर के कमरे में बैठ के तो फैसला नहीं लिया, ये निर्णय जनता ने हमें दिया और उस पर हम अमल करके आगे आए हैं।
जी राशिद अलवी साहब, कम्युनिस्ट पार्टी के जो CPIM के प्रकाश करा साहब हैं, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के बारे में कहा है कि ये एक बेहतरीन मुतबादिल है और तीसरे महाज के लिए एक अच्छी पार्टी बन सकती है, और इसके साथ मसलन तीसरा महाज तैयार किया जा सकता है। तो जाहिर है कि आपकी पार्टी कौमी पार्टी है, तो क्या इस तरह का कोई अंदेशा है आपके सामने?
देखिए, कराच साहब को ये इख्तियार हासिल है कि वो जिसके साथ चाहे वो समझौता करें, वो जिसके साथ चाहे फ्रंट बनाए, ये उनका अपना फैसला है, उनकी अपनी पार्टी का फैसला है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये आम आदमी पार्टी का भी अपना फैसला है, वो जिसके साथ चाहे समझौता करें। लेकिन आने वाला 2014 का चुनाव बहुत ही क्रूशल चुनाव होने वाला है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, वजारत अजमा के उम्मीदवार हैं, और उनका जो माजी रहा है, बैकग्राउंड रहा है, वो इतना दागदार है कि मैं समझता हूं कि वो ही एक बड़ा मुद्दा मुल्क के अंदर बनने वाला है। और आने वाले चुनाव के अंदर अवाम को शायद तमाम मुद्दों को छोड़कर यही फैसला करना होगा कि क्या उनको वजारत अजमा के लिए वोट देना है कि उसकी मुखालफत करनी है। तो ये बहुत नाजुक सवाल है, और कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि सेकुलर ताकतें इकट्ठा हों, और अगर कोई UPA के अंदर शामिल होना चाहता है तो यकीनन कांग्रेस पार्टी उस पर गौर करेगी और उसकी अलाइज उस पर गौर करेंगे।
जी आपकी पार्टी ने दिल्ली इलेक्शन या जो दीगर जो रियासती इलेक्शन हुए थे अभी 5 रियासतों के, उसके बाद कहा था कि हम खुद एहतसाबी का अमल शुरू करेंगे। तो मैं इसी सवाल में दो सवाल आपसे करना चाहूँगा। एक तो आपने नरेंद्र मोदी का नाम लिया कि वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार बन गए हैं अपनी पार्टी की तरफ से, तो मैं दो सवाल एक सवाल में करना चाहूँगा। एक तो ये कि क्या खुद एहतसाबी का अमल आपके यहाँ शुरू हुआ, और दूसरे ये कि क्या आपने भी ये तय किया है किसी का ऐलान करने का कि कौन होगा अगला वजीर आजम आपकी तरफ से?
देखिए, ये 17 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है, और उस मीटिंग में गौर करने के बाद ये फैसला किया जाएगा। सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं, सदर हैं, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि मुनासिब वक्त पे हम इस बात का ऐलान करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, UPA की तरफ से वजारत अजमा का कौन उम्मीदवार होगा। और जहां तक सवाल है एहतसाब करने का, तो यकीनन ये बात आपकी दुरुस्त है, और जिस तरीके से हम चुनाव हारे हैं और चारों सूबों के अंदर हारे हैं, तो उसमें हमारे यहाँ एहतसाब होगा, और जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधारने की कोशिश की जाएगी। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिसपे ताज्जुब भी होता है कि राजस्थान और दिल्ली के चुनाव से एक दिन पहले ही डीजल की कीमत हमारी सरकार ने बढ़ाई। तो इस तरीके के इकदामात यकीनन इलेक्शन के अंदर नुकसानदेह रहते हैं, और वो सारे नुकसान हुए, हमने बर्दाश्त किए। तो अब मुस्तकबिल के अंदर ऐसा कोई गलत कदम ना उठे, और जो गलतियां हमसे हुई हैं, जो हमारे संगठन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमियां रही हैं, उनको पूरे तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे।
जी करण सिंह साहब, बास लोगों का ये कहना है, फिर मैं उन्हीं के नाम लूँगा, किरण बेदी सिंह का साहबा का, कि उन्होंने जो अपना तबसरा किया, टिप्पणी की, वो ये कि आम आदमी पार्टी इस वक्त इस तरह से है कि उसके आगे कुआं है और पीछे खाई है। अगर वो हुकूमत ना बनाती तो बेहतर होता। आप कांग्रेस के साथ उसने उसकी हिमायत ले के कबूल करके हुकूमत जो बनाने का फैसला किया, तो इस तरह की उसकी सिचुएशन हो गई कि आगे बढ़ती है तो कुएँ में गिरती है और पीछे हटती है तो खाई में गिरती है। तो आप इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे?
जी, मैं इस बारे में अगर किसी को शंका है तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब हम लोग राजनीति में आए हैं तो हम हर चीज के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल यहां सत्ता भोगने के लिए आए थे और वही सोचा था कि भाई हमें कुर्सी मिल जाएगी तो हम आराम से बैठ जाएंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं जनता के बीच में जाके काम करने के लिए, और पहले से ही, अभी सरकार बनने की जो तैयारी चल रही है, हम पहले से ही इस पे कार्रवाई कर रहे हैं कि किस तरह से जनता और सरकार के बीच में पार्टी के लोग जो हैं स्वराज की अवधारणा को लागू करें। और हमारे बहुत सारे वॉलेंटियर जिन्होंने मेहनत करके लोगों से जाके वोट देने की दरख्वास्त की थी, वो सारे लोग अब तैयार हैं कि अब स्वराज को हम जमीन पे लेके आएंगे और जो लोगों की परेशानियां हैं उनको हल कराने में उनकी मदद करेंगे। तो जब हम जनता के बीच में यूं के यूं बने रहेंगे वोट लेने के बाद भी, तो स्वाभाविक सी बात है सरकार के और जनता के बीच में हम एक लिंक बनेंगे और जल्दी से जल्दी जो सर्विस डिलीवरी जो उम्मीद कर रही है जनता हमसे वो पूरी करेंगे, वो देंगे हम उनको।
तो ये बात तय हो चुकी है आपके यहाँ के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी होंगे?
जी हाँ, ये तो स्पष्ट हो चुका है, अरविंद केजरीवाल जी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे और ये विधायक जो दल है उन्होंने उनको चुना है। तो पहले से भी ये लोग अंदाजा लगा रहे थे और इसके बाद जो है वो निर्णय हो चुका है विधायकों की तरफ से कि मुख्यमंत्री अरविंद जी ही होंगे हमारे।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राशिद अली साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं और मुख्तार अब्बास नकवी साहब के भी। नाज़रीन, आपने हमारे तीनों मौजूदा मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। बहरहाल, अब दिल्ली में रियासती हुकूमत का तख्त अब सजने वाला है और देखना यह है कि यह हुकूमत कितने दिन चलती है और कितने अपने वादों पर अमल करती है, ये तो आने वाला दिन सबको बताएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली अब्बास जी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।